अध्याय 5 समुद्रगुप्त दिग्विजय। उत्तराधिकार युद्ध से निवृत्त होकर समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति का संगठन किया और दिग्विजय का बीड़ा उठाया। उसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अनेक राजाओं को पराजित करके अपनी सार्वभौम सत्ता की स्थापना की। जो नरेश शेष रह गए उन्होंने उसके पराक्रम से आतंकित होकर या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली या उसके साथ मित्रता कर ली। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में हरिषेण ने उसकी दिग्विजय का सविस्तार वर्णन किया है। हरिषेण समुद्रगुप्त का सांधि विग्रही कुमारामात्य एवं महादंड नायक था, अतः इस प्रशस्ति को राजकीय लेख मानना चाहिए। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने अच्युत नागसेन और गणपति नाग का उन्मूलन कर दिया और कौतुल कुल में उत्पन्न नरेश को बंदी बना लिया तथा पुष्प नामक नगर में आमोद प्रमोद किया। अर्थात बरेली जिला में अच्युत नामधारी राजा की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं नाग मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। संभव है कि अच्युत भी एक नागवंशी राजा था। नागसेन का उल्लेख हर्षचरित में नागवंशी के रूप में हुआ है। इसका विनाश पद्मावती में हुआ था। पुराणों के अनुसार पद्मावती में नागवंश राज्य करता था, अतः नागसेन पद्मावती का नागवंशी राजा प्रतीत होता है। कौतवंशी राजा का नाम नहीं दिया हुआ है। कौतवंश एक महत्व वंश प्रतीत होता है क्योंकि इस वंश की मुद्राएं पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली हैं। कौशाम्बी में भी कोत की मुद्राएं मिली हैं, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समुद्रगुप्त के समकालीन कोत नरेश का राज्य कहाँ था। पुष्पपुर अथवा कुमुदपुर था। इसका समीकरण पाटलिपुत्र अथवा कान्यकुब जिसे लिखे किया जाता है। समुद्रगुप्त के प्रथम आर्यावर्त युद्ध में पाटलिपुत्र का उल्लेख किस संबंध में किया गया है यह निश्चित नहीं है। इस प्रसंग में प्रयाग प्रशस्ति का कथन है कि समुद्रगुप्त ने अपनी सेनाओं द्वारा कौतकुलज को बंदी बनवा लिया और पुष्प नामक नगर में आमोद मनाया। इस संबंध में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, पुष्पपुर पर कौतवंश का अधिकार था। आर्यावर्त युद्ध में समुद्रगुप्त ने कौतव नरेश को पराजित किया और पुष्पपुर पर अधिकार कर लिया। दूसरा, पुष्पपुर पर समुद्रगुप्त का पहले से ही अधिकार था, यह उसकी राजधानी थी। कौत नरेश एवं आर्यावर्त के अन्य राजाओं ने समुद्रगुप्त को उसकी राजधानी में घेर लिया। समुद्रगुप्त ने शत्रुओं को पराजित किया और अपनी राजधानी का उद्धार कराया। पाटलिपुत्र पर गुप्तों का पहले से ही अधिकार था, परंतु कान्यकुब्ज उनके राज्य के बाहर था, अतः पुष्पपुर का समीकरण कान्यकुब्ज से होना चाहिए। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में समुद्रगुप्त ने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। वेनसांग के अनुसार कान्यकुब्ज का दूसरा नाम कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर था। चौथा, प्रयाग प्रशस्ति की शब्दावली से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत नागसेन और गणपति नाग के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, परंतु कौतकुलज के विरुद्ध युद्ध संचालन का काम उसने अपने किसी सेनापति को दिया था। पांचवा, अपनी सफलता के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र अथवा कान्यकुब्ज में विजयोत्सव मनाया। प्रयाग प्रशस्ति में नागसेन के नाम के पश्चात ग अक्षर दिखाई देता है, परंतु उसके पश्चात अनेक अक्षर नष्ट हो गए हैं। डॉक्टर सरकार ने ग का तात्पर्य गणपति नाग से लगाया है। यह ठीक प्रतीत होता है क्योंकि आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में अच्युत और नागसेन के साथ गणपति नाग का नाम आता है। गणपति नाग नागवंशी राजा था। संभवतः वह मथुरा में राज्य करता था। दक्षिणापथ के युद्ध। प्रथम आर्यवर्त युद्ध के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना घाटी पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में उसे कम से कम 12 राजाओं का सामना करना पड़ा। कुछ अकेले अकेले लड़े और कुछ संभवतः संघ बनाकर। वे सभी पराजित हुए, परंतु जहां समुद्रगुप्त ने अपनी भारत के राजाओं का उन्मूलन करके उनके राजाओं राज्यों पर अधिकार कर लिया, वहां उसने दक्षिणी भारत के राजाओं को पराजित तो किया, परंतु उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, उन्हें वापस कर दिया। हरिषेण ने समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा है। कालिदास ने इस प्रकार की विजय की धर्म विजय के नाम से पुकारा है। ग्रहित पतिमुक्तस्य स धर्म विजय नृपः श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीयम्। समुद्रगुप्त बड़ा दूरदर्शी योद्धा था। वह जानता था कि दूरस्थ दक्षिणापथ को जीतना तो संभव है, परंतु उसे अपने साम्राज्य में बनाए रखना बड़ा कठिन था। हरिवेषण ने उत्तरी भारत के राजाओं के नाम पत्र दिए हैं। उनके राज्यों का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यह था कि उनकी पराजय के पश्चात उनके राज्यों का समुद्रगुप्त के साम्राज्य में विलोप हो गया था। इसके विपरीत हरिश्चंद्र ने दक्षिणापथ के नरेशों के नामों के साथ उनके राज्यों के भी नाम दिए हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है कि उन नरेशों की पराजय के पश्चात भी उनके राज्य सुरक्षित रहे। संभवतः समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार करवा कर तथा उन्हें करद बनाकर छोड़ दिया था। इन राज्यों के नाम एवं राज्य इस प्रकार है। पहला, कौशल का महेंद्र। यहाँ कौशल से दक्षिण कौशल समझना चाहिए। इसकी राजधानी श्रीपुर थी। इसके अंतर्गत विलासपुर, रायपुर और संबलपुर के जिले थे। इसका राजा महेंद्र था। दूसरा, महाकांतार का व्याघराज। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार यह राज्य मध्य प्रदेश का वन्य प्रदेश था। इसकी स्थिति वेनगंगा और प्राक कौशल के बीच थी। इसका राजा व्याघराज था। व्याघराज के समीकरण के विषय में मतभेद है। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि व्याघराज उच्च कल्प वंश के जयनाथ का पिता था। यह बुंदेलखंड में जासी और अजयगढ़ के प्रदेशों में राज्य करता था। परंतु यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि व्याघराज उत्तरी भारत का राजा था, दक्षिणी भारत का नहीं, जो सर्वथा असंगत है। वह डॉक्टर राय चौधरी एवं दुर्बिया महोदय ने व्याघराज का समीकरण उसी नाम के एक सामंत शासक से किया है जो नचना और गंज अभिलेखों के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वी शेर प्रथम की अधीनता में राज्य करता था। इसका भी यही अर्थ हुआ कि व्याघराज उत्तरी भारत का शासक था, दक्षिणी भारत का नहीं। अतः यह समीकरण न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हरिश्चंद्र ने व्याघराज को दक्षिणापथ का राजा माना है। पुनश्च यदि व्याघराज वाकाटकों का सामंत होता तो समुद्रगुप्त को वाकाटकों से भी लोहा लेना पड़ता। परंतु प्रयाग प्रशस्ति के वाकाटकों के साथ समुद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन नहीं करता है। तीसरा, केरल का मट्ट राज। कुछ विद्वान केरल के कुराल पढ़ते हैं। डॉक्टर वॉनेट ने इसका समीकरण दक्षिण भारत के गांव कोरांड से किया है। अन्य विद्वान इसे कोलेर झील का प्रदेश मानते हैं। एहोल अभिलेख में कोलेर को कुनाल कहा गया है। पवनदूत नामक ग्रंथ में केरलो को ययाति नगर का निवासी बताया गया है। यह ययाति नगर मध्य प्रदेश के सोनपुर जिले में था। अतः कुछ विद्वान यही मट्टराज का राज्य बताते हैं। चौथा, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। पिष्टपुर का समीकरण गोदावरी जिले में स्थित पीथापुरम के साथ किया जा सकता है। यहाँ का राजा महेंद्रगिरी था। पांचवा, कोटटूर का स्वामी दत्त। यह आधुनिक गंजाम जिले का कोठूर था। छठवा, एरंडपल का दमन। डॉक्टर फिल्ट ने इसका समीकरण खानदेश जिले में स्थित एंड एरंडडोल से किया है। दुर्बिया महोदय ने इसका विरोध करते हुए एरंडपल को गंजाम जिले में स्थित एरंडपली नामक एक नगर माना है। सातवां, कांची का विष्णुगोप। इसका समीकरण आधुनिक मद्रास के कांजीवरम के साथ किया गया है। यहाँ का राजा विष्णुगोप पल्लव वंशी था। आठवां, अवभक्त का नीलराज। इसके समीकरण के विषय में बड़ा मतभेद है। डॉक्टर राय चौधरी का कथन है कि ब्रह्म पुराण अभिमुक्त क्षेत्र का उल्लेख करता है। यह गोमती के तट पर स्थित था। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी के मतानुसार अवमुक्त कांची और वेगी के राज्यों के पड़ोस में एक छोटा सा राज्य था, जहां का राजा नीलराज पल्लव संघ के सदस्य के रूप में समुद्रगुप्त से लड़ा था। नौवां, वेगी का हस्ती वर्मन। वेगी का समीकरण गोदावरी जिले में स्थित एलोर तालुक के गाँव में वेगी अथवा पेंडेन वेगी के साथ किया जाता है। डॉक्टर राय चौधरी इसके राजा हस्ती वर्मन को सालेकायन वंश मानते हैं। दसवां, पल्लक का उग्रसेन। यह गुट्टूर जिले में स्थित पल्लक्कड़ था। यह पल्लवों का एक प्रमुख राज्य केंद्र था। ग्यारहवां, देवराष्ट्र और कुबेर। डॉक्टर स्मिथ ने देवराष्ट्र को महाराष्ट्र माना है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार देवराष्ट्र येल मंचिली था, जो आधुनिक विजयागापट्टम में स्थित है। बारहवां, कुस्थलपुर का धनंजय। डॉक्टर वॉर्नेट के अनुसार कुस्थलपुर को उत्तरी आर्कॉट में स्थित कुट्टलूर समझना चाहिए। इन राजाओं के नामों के पश्चात हरिश्चंद्र ने प्रभृति शब्द का प्रयोग किया है, जिससे प्रकट होता है इसके कि इनके अतिरिक्त दक्षिणी भारत के कुछ अन्य राजाओं ने भी समुद्रगुप्त से युद्ध किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी के कुछ राजाओं ने संघ बनाकर समुद्रगुप्त का सामना किया था। इस अनुमान का एक परोक्ष प्रमाण मिलता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कांची वेगी के दक्षिण में है और इसलिए कांची एवं इसके राजा विष्णुगोप का उल्लेख वेगी के पश्चात होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। हरिशेर ने कांची का उल्लेख पहले किया है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि अवमुक्त वेगी, पल्लक, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर आदि सब या कुछ राज्यों ने संघ बनाकर समुद्रगुप्त का सामना किया था। इस संघ का नेता कांची का विष्णुगोप था, इसी से उसके नाम उल्लेख हुआ है। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त को दक्षिण में दो संघों का सामना करना पड़ा, पहला मट्टराज के नेतृत्व में स्वामी दत्त और दमन के संघ का और दूसरा विष्णुगुप्त के नेतृत्व में नीलराज, हस्ती, वर्मा, उग्रसेन, कुबेर और धनंजय के संघ का। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों के नाम आए हैं उन सब की स्थिति पूर्वी तट पर थी, अतः स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त की विजय यात्रा दक्षिणापथ के पूर्वी भाग में सीमित रही, वह पश्चिमी तट की ओर नहीं गया। संभवतः उसने ऐसा इसलिए किया, वह तत्कालीन वाकाटक वंश से शत्रुता न लेना चाहता था। यदि वह पश्चिमी तट की ओर जाता तो उसे वाकाटक राज्य से संघर्ष करना पड़ता। डॉक्टर तुरबिया महोदय का मत था कि विष्णुगोप के नेतृत्व में जो संघ बना था उसने समुद्रगुप्त को पराजित कर दिया था। इस पराजय के कारण ही वह कांची से आगे न बढ़ पाया और पूर्वी तट से ही होता हुआ अपनी राजधानी पाटलिपुत्र वापस आ गया, परंतु यह मत नितांत काल्पनिक है। प्रयाग प्रशस्ति में कहीं भी समुद्रगुप्त की पराजय का संकेत नहीं मिलता। उसे इसी प्रशस्ति में पृथ्वी व्याघ प्रतिरथ कहा गया है। उसकी मुद्राओं पर भी उसे अजित, अप्रतिरथ आदि कहा गया है। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। दक्षिणापथ के युद्धों का वर्णन करने के पश्चात हरिशेण पुनः आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध का वर्णन करता है। प्रथम आर्यवर्त युद्ध में अच्युत नागसेन, गणपति नाग और कौतकुलज का उल्लेख हुआ है, परंतु द्वितीय आर्यवर्त के युद्ध में कौतकुलज का नाम नहीं मिलता। अच्युत नागसेन और गणपति नाग के अतिरिक्त रुद्रदेव, तमिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नंदिन और बलवर्मन नामक राजाओं के नवीन नाम मिलते हैं। इन नामों के पश्चात आदि शब्द जुड़ा हुआ है। इससे अनुमान होता है कि इस युद्ध में कुछ अन्य राजाओं ने भी भाग लिया था। डॉक्टर राय चौधरी आदि कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में आर्यावर्त में एक ही युद्ध हुआ था। हरिशेण पहली बार आर्यावर्त युद्ध का संक्षेप में वर्णन करता है और दूसरी बार उसी युद्ध का सविस्तार वर्णन करता है। अपने पक्ष में ये विद्वान निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, दो आर्यावर्त युद्ध की कल्पना करने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रथम आर्यावर्त युद्ध में अपने शत्रुओं का पूर्ण रूप से दमन किए बिना ही समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की विजय के लिए चला गया। ऐसी कल्पना करने पर समुद्रगुप्त को एक अदूरदर्शी एवं अकुशल सेनापति मानना पड़ेगा, जो कि वह नहीं था। दूसरा, जब आर्यावर्त के युद्ध में अच्युत नागसेन और गणपति नाग का उन्मूलन हो गया था तो फिर वे दूसरे आर्यावर्त युद्ध कैसे कर सकते थे। परंतु फादर हीरोस आदि विद्वानों ने दो आर्यावर्त युद्धों को माना है। इसका साधारण आधार प्रयाग प्रशस्ति ही है। हरिशेण आर्यावर्त के दो युद्धों का वर्णन करता है, एक दक्षिण पथ युद्ध के पहले और दूसरा उसके बाद। इस बात का कोई कारण नहीं था कि एक बार वह आर्यावर्त युद्ध का संक्षेप देता और दूसरी बार उसका ब्यौरा। उन्मूल्य का शाब्दिक अर्थ नाश करके नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ पराजित कर है। समुद्रगुप्त आर्यावर्त के राजाओं को पराजित करके तथा उनके राज्यों को अपने अधीन करके दक्षिणी भारत के अभियान पर निकला था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय वह दक्षिणी भारत के युद्धों में संलग्न था उसी समय उत्तरी भारत में उसके शत्रुओं ने पुनः संगठन करके विद्रोह का झंडा उठाया। यह अस्वाभाविक नहीं था। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत से लौटा और उसने आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में अपने नए पुराने शत्रुओं का पुनः दमन किया। इस घटनाक्रम में कोई भी ऐसी अस्वाभाविकता नहीं है कि जिससे दो आर्यावर्त युद्धों को मानने में कोई विशेष कठिनाई हो। पराजित राजाओं का समीकरण। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के निम्नलिखित राजाओं को उखाड़ फेंका और उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। पहला, रुद्रदेव। दीक्षित महोदय ने रुद्रदेव का समीकरण रुद्रसेन प्रथम वाकाटक से किया है, परंतु यह असंगत प्रतीत होता है। प्रथमतः रुद्रसेन प्रथम वाकाटक आर्यावर्त का राजा न था और द्वितीयतः रुद्रदेव की पराजय के पश्चात भी वाकाटक वंश राज्य करता रहा था, उसका प्रसभोद्धरण नहीं हुआ था। कौशाम्बी के मध्य वंशी राजाओं के नाम मिलते हैं, उनमें एक श्री रुद्र था। उसकी एक तांबे की मुद्रा कौशाम्बी में मिली है। है। प्रयाग के समीप झूसी से रुद्रदेव को मिट्टी की एक मुहर भी मिली है। अतः प्रयाग प्रशस्ति का रुद्रदेव कौशाम्बी का राजा प्रतीत होता है। दूसरा मतिल, बुलंदशहर से एक मुहर मिली है जिस पर मतिल नाम लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों ने मतिल और मतिल को एक ही व्यक्ति माना है। एलन महोदय ने कहा है कि इस समीकरण के मानने में यह कठिनाई है कि मुहर पर मतिल के साथ किसी उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे वह कोई सामान्य व्यक्ति प्रतीत होता है, राजा नहीं। परंतु जैसा कि डॉक्टर राय चौधरी ने कहा है, हम अनेक ऐसे राजाओं को जानते हैं जिनका उल्लेख बिना किसी उपाधि के हुआ है। इस स्थिति में मतिल और मतिल को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है। मतिल की मुहर पर नाग का चित्र है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह नागवंशी राजा था। तीसरा नागदत्त, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार यह नागवंशी राजा था। मथुरा से दत्त नामधारी अनेक राजाओं की मुद्राएं मिली हैं। संभव है कि नागदत्त का उनके साथ कोई संबंध रहा हो। चौथा चंद्रवर्मा, कुछ विद्वान इस राजा का समीकरण सुसुनिया अभिलेख में उल्लिखित चंद्रवर्मा से करते हैं। इस अभिलेख के अनुसार चंद्रवर्मा पुष्करण का राजा था। पुष्करण का समीकरण मारवाड़ के पकरिन अथवा बांकुड़ा जिले के पोखरण नामक ग्राम से किया गया है। दोनों दशाओं में सुसुनिया अभिलेख का चंद्रवर्मा आर्यावर्त का राजा नहीं ठहराता, अतः समीकरण असंगत है। पांचवा गणपति नाग, संभवतः प्रथम आर्यावर्त युद्ध में भी इसने भाग लिया था। इस संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति का जो वर्णन है उसमें उसके नाम का प्रथम अक्षर ग ही रह गया है, शेष भाग नष्ट हो गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह नागवंशी राजा था। इसकी मुद्रा में मथुरा पवाया और वंशी नगर विदिशा से मिली है। छठवा नागसेन, इसका समीकरण प्रथम आर्यावर्त युद्ध के संबंध में किया जा चुका है। सातवा अच्युत, इसका भी उल्लेख पहले किया जा चुका है। अच्युत और नागसेन प्रथम आर्यावर्त युद्ध में भी समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए थे। आठवा नंदी, यह नागवंशी राजा प्रतीत होता है। दुर्बिया महोदय का मत है कि यह पुराणों का शिव नंदी था। नौवा बलवर्मा, संभवतः यह नागवंशी राजा था। इसका समीकरण डॉक्टर मरूप नरेश भास्कर वर्मा के किसी पूर्वज के साथ करना नितांत असंगत है, क्योंकि कामरूप प्रत्यंत राज्य था, आर्यावर्त का राज्य नहीं। नागों की पराजय, आर्यावर्त युद्ध में उल्लिखित राजाओं में अधिकांश अच्युत नागसेन, गणपति नाग, मतिल, नागदत्त, नंदी, बलवर्मा, नागवंशी प्रतीत होते हैं। कुषाणों के पतन के पश्चात नागों ने उत्तरी भारत में अपने अनेक राज्य स्थापित कर रखे थे। अतः समुद्रगुप्त को उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के पूर्व इन्हीं नागों से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में अनेक नाग नरेश मारे गए और इनका साम्राज्य स्थापना का स्वप्न चूर्ण हो गया। यह महत्वपूर्ण बात है कि समुद्रगुप्त ने नागों के शत्रु गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। समुद्रगुप्त और वाकाटक वंश, इस समय वाकाटक वंश दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण वंश हो गया था। इसके सम्राट प्रवरसेन प्रथम ने मालवा, बरार, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, हैदराबाद राज्य का कुछ भाग, गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड और दक्षिणी कौशल को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग 335 ईस्वी से 360 ईस्वी तक राज्य किया। यह प्रसिद्ध नाग नरेश भौना का दोहित्र था। रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा हुआ। इसने लगभग 360 ईस्वी से 385 ईस्वी तक शासन किया। वाकाटक अभिलेख इसके शासन काल को सुख समृद्धि का काल बताते हैं। नचना और गंज अभिलेख से विदित होता है कि पृथ्वीसेन का एक सामंत व्याघ्रदेव बरार तथा उसके समीपस्थ प्रदेश पर राज्य कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इस प्रश्न पर बड़ा मतभेद है कि समुद्रगुप्त का इन दोनों वाकाटक नरेशों के साथ क्या संबंध था। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय का बीड़ा उठाया था। उसने मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ प्रदेश पर भी अपना अधिकार कर लिया था। क्या उसकी आक्रामक नीति से वाकाटक राज्य के लिए खतरा उत्पन्न नहीं हो गया था? क्या दोनों शक्तिशाली राज्यों में संघर्ष नहीं हुआ? इन प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते हैं। दीक्षित और जायसवाल आदि विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि समुद्रगुप्त और वाकाटक वंश के बीच युद्ध हुआ था। उनके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, जब समुद्रगुप्त उत्तरी भारत में नागों का दमन कर रहा था तो भवनाग का दोहित रुद्रसेन प्रथम वाकाटक चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने मातृ वंश को अवश्य सहायता दी होगी। दूसरा, आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में जिस रुद्रदेव ने समुद्रगुप्त का सामना किया था वह वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम ही था। जसपाल महोदय का मत है कि इन दोनों का यह युद्ध एरण में हुआ था और इस युद्ध में रुद्रसेन प्रथम मारा गया। तीसरा, एरण अभिलेख समुद्रगुप्त के पराक्रम और उपलब्धियों का वर्णन करता है तथा एरिकीन को समुद्रगुप्त का सौभोग नगर बताता है। यह प्रदेश वाकाटकों के अधीन था, अतः समुद्रगुप्त ने युद्ध द्वारा इसे जीता था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने यहाँ किसी वस्तु संभवतः मंदिर का निर्माण किया था। चौथा, दक्षिणी कौशल और आंध्र प्रदेश भी वाकाटकों के अधीन थे। इन्हें जीतने के पूर्व समुद्रगुप्त को वाकाटक वंश से युद्ध करना पड़ा होगा। पांचवा, नचना और गंज अभिलेखों से प्रकट होता है कि महाकांतर में वाकाटक नरेश पृथ्वी शेर प्रथम का सामना व्यागदेव राज्य कर रहा था। यह प्रयाग प्रशस्ति का व्याघराज था जिसे समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी भारत के अभियान में पराजित किया था। अपने सामंत की ओर से वाकाटक नरेश पृथ्वी शेर प्रथम ने समुद्रगुप्त से अवश्य युद्ध किया होगा। छठवा, वाकाटक नरेश पवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, परंतु रुद्रसेन प्रथम एकमात्र महाराज ही कहा गया है। यह उसकी शक्ति एवं महत्व के हर्ष का द्योतक है। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होने के कारण ही वह सम्राट की उपाधि धारण न कर सका था, परंतु इनमें से कोई भी तर्क अकाट्य नहीं है। पहला, प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक राज्य निर्बल पड़ गया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रवरसेन के पौत्र रुद्रसेन प्रथम को सिंहासन के लिए अपने चाचाओं से लड़ना पड़ा। इस कला के कारण रुद्रसेन प्रथम स्वयं ही भावनाग की सहायता पर निर्भर था। वह समुद्रगुप्त के विरुद्ध नागों की सहायता क्या करता? यही नहीं, रुद्रसेन को शकों से भी खतरा था। प्रवरसेन प्रथम ने उनका दमन किया था, परंतु रुद्रसेन प्रथम के समय उन्होंने पुनः अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उनके राजा रुद्रदामन द्वितीय ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इनके पूर्व प्रवरसेन प्रथम ने रुद्रसेन द्वितीय और अशोकदामन द्वितीय को केवल क्षत्रप की उपाधि धारण करने के लिए विवश किया था। शकों के नवीन खतरे के रहते हुए यह अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त की शत्रुता मोल लेता। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति का रुद्रदेव रुद्रसेन प्रथम वाकाटक नहीं हो सकता। इसके अनेक कारण हैं। अ, दोनों के नाम में भिन्नता है। ब, रुद्रदेव आर्यावर्त का राजा था जबकि रुद्रसेन प्रथम वाकाटक दक्षिणापथ का। स, यदि पराजित रुद्रदेव वाकाटक नरेश होता तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त की इस विजय का सगर्व एवं सविस्तार वर्णन करता। रुद्रदेव का नामोल्लेख मात्र हुआ है और वह भी आर्यावर्त के 8 छोटे छोटे राज्यों के साथ। इससे स्पष्ट होता है कि वह भी आर्यावर्त का कोई छोटा शासक होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि रुद्रदेव कौशाम्बी का राजा था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रुद्रसेन और समुद्रगुप्त का युद्ध एरण में हुआ था। इसमें रुद्रसेन मारा गया था। तीसरा, एरण अभिलेख से समुद्रगुप्त का अधिकार एरण प्रदेश सिद्ध होता है, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने यह प्रदेश रुद्रसेन अथवा पृथ्वीसेन से छीना था। चौथा, दक्षिणी कौशल और आंध्र प्रदेश प्रवरसेन के अधीन थे, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात ये वाकाटक राज्य से निकल गए थे। पांचवा, नचना और गंज अभिलेखों का व्याघदेव प्रयाग प्रशस्ति का व्याघराज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का व्याघराज दक्षिणापथ का राजा था जबकि नचना और गंज अभिलेखों का व्याघदेव उत्तरी भारत का सामंत शासक था। छठवां, शास्त्रीय नियमों के अनुसार वाजपेयी यज्ञ का कर्ता ही सम्राट की उपाधि का अधिकारी होता था। वाकाटक नरेशों में एकमात्र प्रवरसेन प्रथम ने ही वाजपेयी यज्ञ किया था, अतः उसी ने सम्राट की उपाधि धारण की। अन्य वाकाटक नरेश एकमात्र महाराज कहलाते थे। महाराज की उपाधि रुद्रसेन प्रथम की अधीनता सूचित नहीं करती। पुनश्च प्रयाग प्रशस्ति एवं एरण अभिलेखों में कहीं पर भी वाकाटकों का उल्लेख नहीं हुआ है। यदि वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त द्वारा युद्ध में मारा जाता तो उसका पुत्र पृथ्वीसेन अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह समुद्र चंद्रगुप्त की पौत्री प्रभावती गुप्ता के साथ न करता। रुद्रसेन प्रथम की पराजय और मृत्यु के पश्चात संपूर्ण वाकाटक राज्य पर समुद्रगुप्त का अधिकार अथवा प्रभाव हो जाना चाहिए था, परंतु किसी भी साक्ष्य में इसका संकेत नहीं मिलता। रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु में हत्या वाकाटक वंश के लिए एक दारुण आपदा हुई होगी और उस दशा में उसके पुत्र पृथ्वीशेर प्रथम का शासन काल सुख समृद्धि का काल न होता। इन आधारों पर यही निष्कर्ष अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने वाकाटक राज्य पर आक्रमण नहीं किया, उनके साथ संघर्ष से बचने के लिए ही उसने अपना दक्षिणी भारत का अभियान पूर्वी भाग में ही सीमित रखा और वह पश्चिमी तट की ओर न गया। आटविक राज्य आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध का वर्णन करने के पश्चात हरिशेर वन्य प्रदेश के राजाओं का उल्लेख करता है और कहता है कि समुद्रगुप्त ने उन सब राजाओं को अपना दास बना लिया। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार ये आटविक राज्य आलवक और डभाला में थे। इन आटविक राज्यों की स्थिति के संबंध में 199 गुप्त वंश सम्मत तथा 209 गुप्त सम्मत के अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। इनके अनुसार महाराज हस्तिन डभाला तथा 18 अटवी राज्यों पर शासन कर रहा था। इस प्रकार यदि आटविक राज्यों को मध्य भारत में मान लिया जाए तो यह अनुमान स्वाभाविक प्रतीत होगा कि प्रथम आर्यावर्त युद्ध के पश्चात दक्षिणी भारत की ओर अभियान करते समय समुद्रगुप्त ने बीच में आटविक राज्यों को जीता था, परंतु हरिशेन ने आटविक राज्यों की विजय का उल्लेख द्वितीय आर्यावर्त राज्यों की विजय का उल्लेख द्वितीय आर्यावर्त युद्ध और पूर्वी भारत की विजय के बीच में किया। इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि आटविक राज्य आर्यावर्त और पूर्वी सीमांत राज्यों के बीच में स्थित थे। सीमावर्ती राज्य तत्पश्चात हरिशेन सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख करता है। पूर्वी सीमा पर स्थिति राज्यों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। पहला समतट गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, दूसरा डवाक फिल्ट के अनुसार यह डाका प्रदेश था परंतु डॉक्टर स्मिथ इसे उत्तरी बंगाल में मानते हैं, तीसरा कामरूप इसमें वर्तमान आसाम को भाग सम्मिलित था, चौथा नेपाल, पांचवा कर्तिपुर कुमायूं गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश आदि शब्द के प्रयोग से विदित होता है कि इस सूची में कुछ अन्य सीमावर्ती राज्य भी रहे होंगे। इनके राजाओं का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सब राजतंत्रात्मक थे। पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य निम्नलिखित थे, पहला मालव यह जाति मेवाड़ टोंक और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बसी हुई थी, दूसरा अर्जुनायन यह जाति दिल्ली जयपुर और आगरा के प्रदेश में रहती थी, तीसरा योधे डॉक्टर भंडारकर के मतानुसार यह जाति मेवाड़ कोटा तथा मध्य भारत के समीपवर्ती प्रदेश में रहती थी, डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार पंजाब जो ही बार प्रदेश उनका प्रदेश रहा होगा, चौथा माद्रक इस जाति की राजधानी शाकल थी, पांचवा आभीर डॉक्टर राय चौधरी सिंधु घाटी के दक्षिणी भाग एवं पश्चिमी राजपुताना को इसका निवास स्थान बताते हैं। यही पेरिप्लस और तालवी ने अवीरिया राज्य का उल्लेख किया है। डॉक्टर स्मिथ इनके प्रदेश को झांसी और भिलसा के बीच अहिरवाड़ा में बताते हैं। छठवां प्राजून डॉक्टर भंडारकर ने इसे भिलसा के निकट नरसिंहगढ़ में रखते हैं। सातवां सनकानिक चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख में इस जाति का उल्लेख हुआ है, अतः इसके ग्वालियर प्रदेश के आसपास रखा जा सकता है। आठवां काक साची को काकनाथ कहते थे, डॉक्टर स्मिथ काक जाति का संबंध काकनाथ से स्थापित करते हैं। नौवां खरपरी डॉक्टर भंडारकर जाति का समीकरण खरपर जाति से करते हैं और मध्य प्रदेश के दमोह जिले को इसका निवास स्थान मानते हैं। हरिशेन का आशय पश्चिमी सीमा पर स्थित कुछ अन्य जातियों से भी होगा क्योंकि उसने उपयुक्त जातियों के नाम के अंत में आदि जोड़ा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रयाग प्रशस्ति पूर्वी सीमा के राज्यों के नृपों का उल्लेख करती है, परंतु वह पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ नृप शब्द का प्रयोग नहीं करती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य गणतंत्रात्मक थे। डॉक्टर जायसवाल का विश्वास था कि समुद्रगुप्त के आक्रामक एवं विस्तार नीति ने भारतवर्ष के गणतंत्रवादी राज्यों का विनाश कर दिया, परंतु जैसा कि डॉक्टर अल्टेकर ने कहा है कि यह मत ठीक नहीं है। समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों का विनाश नहीं किया, केवल उन्हें अपनी प्रभुत्ता स्वीकार करने के लिए विवश किया। समुद्रगुप्त के शासन के अंतर्गत इन गणराज्यों को स्वायत्त शासन प्राप्त था। सीमावर्ती राज्यों के साथ संबंध पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों और समुद्रगुप्त के बीच जो संबंध था उस पर प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित कथन मिलता है। सर्व करदाना आज्ञा करण प्रमाणागमन अर्थात पहला सर्व कर दान, यह राज्य समुद्रगुप्त को सब प्रकार के कर देते थे। दूसरा आज्ञाकरण, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। और तीसरा प्रणामागमन, व्यक्तिगत रूप से आकर समुद्रगुप्त के समक्ष अभिवादन करते थे। संभवतः समुद्रगुप्त को इन राज्यों के साथ युद्ध नहीं करना पड़ा था। उसके दिग्विजय से भयभीत होकर उन्होंने स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु ये राज्य समुद्रगुप्त के साम्राज्य के भीतर न थे। विदेशी राज्य, प्रयाग प्रशस्ति में विदेशी राज्यों के नाम इस प्रकार आते हैं: देवपुत्र शाही, सहान शाही, सकमुरुंडे, शैकल आदि दिभ्य सर्वदीपावशी भी। देवपुत्र शाहसी, सहान शाही। रटरफिल्ट के अनुसार तीन राज्यों के राजाओं से लिया गया है: पहला देवपुत्र, दूसरा शाही और शाहानुशाही। एलन ने भी इस कथन में तीन राजाओं का वर्णन माना है, परंतु डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि प्रथम शब्द देवपुत्र नहीं है, वरन उसका तदथित्य है देवपुत्र। अतः यह शब्द किसी राजा की उपाधि नहीं हो सकता, यह अविच्छिन्न रूप से शाही शाहानुशाही से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार देवपुत्र शाहीना शाहानुशाही एक कुषाण राजा की उपाधि है, इससे तीन राजाओं का बोध नहीं होता। यह सत्य है कि तदथित्य होने के कारण देवपुत्र एक स्वतंत्र उपाधि नहीं हो सकता, परंतु देवपुत्र शाही एक उपाधि हो सकती है और शाहानुशाही दूसरी उपाधि। इस प्रकार यहाँ दो विदेशी राजाओं का अर्थ लगाया जा सकता है। यह अर्थ इसलिए भी ठीक प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के समय पंजाब में कोई भी इतना शक्तिशाली विदेशी शासक न था जो देवपुत्र शाही शाहानुशाही की महान उपाधि धारण कर सकता। परंतु अब प्रश्न यह होता है कि देवपुत्र शाही और शाहानुशाही से किन राजाओं को समझा जाए। कुषाण अपने को देवपुत्र कहते थे, अतः देवपुत्र शाही से पंजाब के कुषाणों अथवा किदार कुषाणों का बोध होता है। संभवतः पंजाब का कुषाण नरेश किराद किदार था। यह गांधार प्रदेश से शेषेनियन नरेश शापुर द्वितीय की अधीनता में राज्य करता था। कदाचित उसने समुद्रगुप्त की सहायता से शेषेनियन वंश के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और गांधार कश्मीर पश्चिमी पंजाब में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। संभवतः शाहानुशाही से काबुल घाटी के किसी विदेशी शासक का तात्पर्य था। शकमुरुंड के विषय में भी मतभेद है, इससे एक जाति का बोध होता है अथवा दो जातियों का। स्टेन कोनों का मत है कि यहाँ मुरुंड से किसी जाति का तात्पर्य नहीं है। मुरुंड शक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ स्वामी होता है, अतः शक मुरुंड से किसी शक नरेश का बोध होता है। परंतु अधिकांश विद्वान शकों की भांति मुरुंडों को भी अजाति मानते हैं। कदाचित शक मुरुंडों से हरिशेण का तात्पर्य मध्य पंजाब की शीलद और गडहर जातियों से और पश्चिमी पंजाब की शक जाति से हो। इन प्रदेशों में इन जातियों की मुद्राएं मिली हैं। कुछ गडहर मुद्राओं पर समुद्रगुप्त का नाम भी मिलता है। कुछ विद्वान मुरुंड राज्य को लंपाक में मानते हैं, जिसका उल्लेख हेमचंद ने अभिधान चिंतामणि में किया है। डॉक्टर अल्टेकर और डॉक्टर डीसी सरकार आदि कुछ विद्वान शक राज्य को पश्चिमोत्तर प्रदेश में नहीं वरन पश्चिमी प्रदेश में मानते हैं। यहाँ महाक्षत्रप रुद्रदामन का वंशत रुद्रसेन तृतीय राज्य कर रहा था। शैलक का अर्थ लंका निवासी है। समुद्रगुप्त और लंका नरेश के संबंध की पुष्टि एक स्वतंत्र साक्ष्य से होती है। चीनी लेखमेन वाघमेंसी के ग्रंथ हिंग चोयन से ज्ञात होता है कि लंका नरेश वर्णन ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजकर बोध गया में लंका से आने वाले यात्रियों के लिए एक विहार बनवाने की आज्ञा मांगी थी। समुद्रगुप्त ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ह्वेनसांग ने इस विहार को देखा और उसके निर्माण पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि लंका नरेश ने भारत के राजा को अपने देश के समस्त रत्न भेंट कर दिए थे। इस समय तक दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी हो। कदाचित प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित सर्वद्वीपावशिभी से भारत के निवासियों का तात्पर्य हो। इन भारतीयों का अपनी मातृभूमि के साथ संबंध संपर्क स्थापित करना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। जावा के एक ग्रंथ तंत्री कामदक के अनुसार महाराज ऐश्वर्यपाल अपने को समुद्रगुप्त का वंशज बताता था। संबंध का स्वरूप, उपयुक्त विदेशियों का समुद्रगुप्त के साथ क्या संबंध था, इसका वर्णन हरिषेण निम्नलिखित ढंग से करता है: आत्मनिवेदन, कन्योपायदान, गरुड़ मद्रस्व विषय अनुभुक्ति शासन याचना। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है: पहला आत्मनिवेदन, विदेशी नरेश समुद्रगुप्त की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते थे। दूसरा कन्योपायदान, वे अपनी कन्याओं को सम्राट को भेंट करते थे और उन्हें विवाह में देते थे। तीसरा गरुड़मद कश्य विषय भुक्ति शासन याचना, अपने प्रदेशों में शासन करने की आज्ञा लेने के लिए वे समुद्रगुप्त के राजपत्रों के लिए अभ्यर्थना करते थे। गुप्त राज राजपत्रों पर गरुण का राजचिन्ह अंकित रहता था। इन कथनों को शाब्दिक अर्थ में ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश के विदेशी नरेश और लंका नरेश एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समस्त द्वीपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली हो और वे गुप्त सम्राट की सेवा के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होते हों अथवा अपनी कन्याएं उसे भेंट करते हों अथवा अपने राज्यों में शासन करने के हेतु वे समुद्रगुप्त का आदेश अथवा अनुमोदन चाहते हों। लंका के उदाहरण से स्पष्ट है कि इस कोटि के सभी विदेशी नरेश पूर्णतः स्वतंत्र थे। अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि लंका नरेश की भांति अन्य विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संबंध बना रखा था तथा दोनों पक्षों के बीच दूत मंडलों एवं उपहार आदि का आदान प्रदान होता था। संभवतः कुछ ने समुद्रगुप्त के साथ विवाह संबंध भी स्थापित कर रखा हो। अश्वमेघ एलन के मतानुसार अपनी दिग्विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ किया। इसकी सूचना हमें निम्नलिखित साक्ष्यों से मिलती है। पहला, समुद्रगुप्त के अश्वमेघ शैली की मुद्राएं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर एक यूप के समक्ष घोड़ा खड़ा हुआ है। मुद्रा के ऊपर वित्ताकार के रूप में निम्नलिखित वाक्य मिलता है, राजाधिराजा पृथ्वी अवित्वा दिवम जत्यत प्रतिवार्य वीर्यः अथवा पृथ्वी विजित्वम दिवम जत्या इत्वामी मेघा। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर ढीले वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए राजमहर्षी खड़ी हुई है। इसके दाहिने हाथ के चमर और बाएं हाथ में संभवतः हसिया है। साथ ही इस भाग पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। दूसरा, समुद्रगुप्त की पौत्री प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्र पत्रों पर समुद्रगुप्त के लिए अनेक अश्वमेघ याजिना का प्रयोग किया गया है। तीसरा, गुप्त अभिलेखों में इसके लिए चिरोत्सव मेघा हर्तु का प्रयोग किया गया है। चौथा, ब्रिटिश संग्रहालय में एक यूप से बंधे हुए घोड़े की मिट्टी की मूर्ति है। इस पर पराक्रम लिखा मिलता है। रैप्शन महोदय का अनुमान है कि यह समुद्रगुप्त की अश्वमेघ का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ किया था। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र से तो यह विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेघ किए थे। उसकी अश्वमेघ शैली की मुद्राओं पर दो प्रकार के दो से भी उसके दो अश्वमेघों की कल्पना की जा सकती है। प्राय प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेघ का कोई उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रशस्ति के उत्कीर्ण कराने के पश्चात अश्वमेघ किया गया होगा। चिरोत्सन्न का साधारण अर्थ बहुत दिनों से परितक्य होता है। इसके अनुसार यह अर्थ निकलता है कि समुद्रगुप्त के पूर्व बहुत दिनों से किसी ने अश्वमेघ किया ही न था, परंतु यह असत्य है। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात सातवाहन शातकर्णी प्रथम इक्ष्वाकु शांतमूल वाकाटक प्रवरसेन प्रथम और महर्षिवो आदि ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इस कठिनाई को देखते हुए कुछ विद्वानों ने चिरोत्सन्न का अर्थ दीर्घकालीन लगाया है। अपने अश्वमेघ यज्ञ की स्मृति में समुद्रगुप्त ने एक विशेष प्रकार की स्वर्ण मुद्रा निर्मित कराई। साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल का कुछ भाग तथा मालवा का कुछ भाग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्य एवं पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 राज्य करद राज्य थे और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सौवत शासक प्राप्त था। संभव है कि दक्षिणी भारत के पराजित 12 राज्य भी करद हों। युद्ध में पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने राजाओं के साथ उदारता का बर्ताव किया था और उन्हें इनके राज्य वापस कर दिए थे। अतः ये राजा समुद्रगुप्त के प्रति भय आदर और कृतज्ञता की भावना रखते होंगे। अफगानिस्तान पंजाब लंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों के साथ समुद्रगुप्त के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर सिंध गुजरात काठियावाड़ और उड़ीसा के साथ समुद्रगुप्त का किसी प्रकार का संबंध नहीं था। समुद्रगुप्त का शासनकाल, समुद्रगुप्त किस तिथि में सिंहासनासीन हुआ और उसके किस तिथि तक राज्य किया, ये प्रश्न बड़े विवादग्रस्त हैं। इस अनिश्चितता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख और एरण अभिलेख में कोई तिथि नहीं दी गई है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख के पूर्व किसी भी गुप्त नरेश ने अपने अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग नहीं किया है। तीसरा, नालंदा ताम्रपत्र में 5 तिथि मिलती है और गया ताम्रपत्र में 9, परंतु इस बात पर भारी मतभेद है कि ये ताम्रपत्र समुद्रगुप्त के लेख हैं अथवा जाला हैं। इस बात पर भी संदेह किया जाता है कि इनकी तिथियां गुप्त संवत की तिथियां हैं अथवा नहीं। चौथा, 319 ईस्वी का गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने अथवा समुद्रगुप्त ने अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस प्रश्न पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख 61 गुप्त संवत का है। इसका अर्थ यह है कि वह 380 ईस्वी में राज्य कर रहा था। इस अभिलेख को उसके शासन के पांचवें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया था, अतः स्पष्ट है कि यह 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। स्थिति के पूर्व उसके पिता समुद्रगुप्त का शासन समाप्त हो गया था, परंतु समुद्रगुप्त सिंहासनासीन कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि निम्नलिखित है। पहला डॉक्टर मजूमदार 319 ईस्वी अथवा 350, दूसरा डॉक्टर आरडी बनर्जी 328 ईस्वी, तीसरा डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर सरकार 330 ईस्वी, चौथा गोखले 350 ईस्वी। समुद्रगुप्त के गया और नालंदा ताम्रपत्र। सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने गया ताम्रपत्र का पता लगाया था। इसका सर्वप्रथम संपादन फिल्ट महोदय ने किया था। इस ताम्रपत्र के साथ साथ समुद्रगुप्त की राज मुद्रा भी जुड़ी हुई है। इसके द्वारा समुद्रगुप्त ने गोपदेव स्वामी नामक एक ब्राह्मण को गया विषय में रेवतिका नामक ग्राम का दान दिया था। इसकी तिथि 9 है। फिल्ट महोदय के मतानुसार इस ताम्रपत्र में लगी हुई राज मुद्रा वास्तविक है। उसे किसी अन्य ताम्रपत्र से अलग कर इसी ताम्रपत्र में लगाया गया था, परंतु निम्नलिखित आधारों पर यह अनुमान किया जा सकता है कि स्वयं ताम्रपत्र जाली है। पहला, राजमुद्रा और ताम्रपत्र की धातु भिन्न भिन्न है। दूसरा, दोनों की लिपि भिन्न भिन्न है। तीसरा, ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त के विरुद्धों के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया गया है, परंतु उसके नाम के साथ कर्ता कारक का। फिल्ट महोदय का कथन है कि यह जाली लेख लगभग 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया होगा, क्योंकि इसमें प्रयुक्त हस्तश्व जय स्कंधावतार आदि शब्दों का प्रयोग 8वीं शताब्दी के पूर्व नहीं होता था। परंतु डॉक्टर राखल दास बनर्जी एवं डॉडेकर आदि कुछ विद्वानों ने फिल्ट के मत का खंडन करते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि गया राज मुद्रा वास्तविक है। कालांतर में नालंदा ताम्रपत्र का पता चला। इसमें समुद्रगुप्त के शासन की तिथि 5 है। इसके वास्तविक राजलेख स्वीकार करने में वही आपत्तियां हैं जो गया ताम्रपत्र के विषय में बताई गई हैं। अतः डॉक्टर अमलानंद घोष एवं डॉक्टर दिनेश चंद सरकार ने इस लेख को भी जाली घोषित किया, परंतु डॉक्टर भंडारकर आदि कुछ विद्वान इसे समुद्रगुप्त का वास्तविक लेख मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार 5 और 9 दोनों तिथियां गुप्त संवत की हैं। अतः वे समुद्रगुप्त के शासन काल को 324 ईस्वी तथा 328 ईस्वी में रखती हैं। ये तिथियां गुप्त संवत की स्थापना के इतने निकट हैं कि कुछ विद्वान यह भी अनुमान करते हैं कि गुप्त संवत की स्थापना समुद्रगुप्त ने ही की थी। इस मत की पुष्टि में आर्यमज्य श्रीमल कल्प का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त की गुप्त वंश का पहला राजा था। परंतु यदि यह मत स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि समुद्रगुप्त ने 55 वर्ष तक राज्य किया, जो अस्वाभाविक प्रतीत होता है। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। पहला हरिषेण या खादत्त पाकिक संधि विग्रहिक कुमारमात्य और महादंड नायक था। साधारणतया इनमें से प्रत्येक पद पर एक एक अधिकारी नियुक्त होता था, परंतु हरिषेण की योग्यता और महत्ता को देखते हुए ये सारे पद उसी को दिए गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार कुमारमात्य राजकुमार का मंत्री होता था, परंतु यह शब्द पद का नहीं उच्च कर्मचारी वर्ग का द्योतक प्रतीत होता है। दूसरा ध्रुवभूति यह हरिषेण का पिता था या महादंड नायक था। तीसरा तिल भट्टक यह भी महादंड नायक था। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व। समुद्रगुप्त की गणना भारतवर्ष के महान विजेताओं और सेनापतियों में की जाती है। उसने अपने भुजबल से भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया और इस प्रकार फिर देश की राजनीतिक एकता स्थापित की। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। वह लाभ विजयी अथवा असुर विजयी न होकर धर्म विजयी था। वह एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने देश काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया। आर्यवर्त में उसने उन्मूलन और पश्चाधरण की नीति का पालन करते हुए 9 राजाओं को पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु दक्षिणापथ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इसके अनुसार उसने पराजित एवं बंदीकृत राजाओं को स्वतंत्र कर दिया और उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए। वह जानता था कि यातायात के द्रुतगामी साधनों के अभाव में दूरवर्ती दक्षिणापथ का साम्राज्य में बनाए रखना बड़ा दुष्कर होगा। सीमावर्ती राज्यों से उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन का पालन कराया, परंतु उसने उनके राज्यों को अभी विनाश नहीं किया। विदेशी राज्यों के साथ उसने मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। महान योद्धा होते हुए भी वह अत्यंत दयालु था और भक्ति तथा विनीत भाव से उसका कोमल हृदय जीता जा सकता था। वह साधु का विनाशक था, परंतु साधु के उत्थान का कारण उसकी बुद्धि सदैव कृपण दीन अनाथ एवं आतुर मनुष्यों की सहायता में लगी रहती थी। वह महादानी था, उसके कामचारी सदैव पराजित राजाओं के विभव को लौटाने में व्यस्त रहते थे। उसने सैकड़ों हजारों गांवों का दान दिया था। वह कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज के समान था। उसने अपने तीक्ष्ण तथा पांडित्यपूर्ण प्रतिभा और संगीत ज्ञान से देवराज इंद्र के गुरु कश्यप एवं तुम्बुरु नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसकी वीणा शैली की मुद्रा से भी होती है। इस पर वह एक वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह एक विद्वान भी था, उसने अपनी अनेक रचनाओं से कविराज की उपाधि पाई थी। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु का आश्रयदाता था। इस प्रकार समुद्रगुप्त आगे आने वाले समय की भौतिक एवं बौद्धिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था।